मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 28 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है समीक्षा सोनी, आप गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं भारत की पड़ोस नीति पर आप सबसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले हम लोग दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने एक वाक्य सुना होगा, एक ये पहली ही न्यूज थी और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का वक्तव्य था और वक्तव्य का भाव कुछ इस तरीके का था कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल होना चाहिए, राइट? उन्होंने कहा सरकार और संगठन के बीच। सरकार का मतलब क्या हुआ? सरकार का मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार के प्रमुख हैं, उनकी जो कैबिनेट है, उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद है, वो सरकार है। इस मायने में ये सरकार है कि यही सारे के सारे महत्वपूर्ण निर्णय लेगी, राइट? तो ये सरकार हो गई। और दूसरा संगठन, यहां जो प्रधानमंत्री संगठन के बारे में कह रहे हैं, इस संगठन का मतलब है पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, राइट? तो जब प्रधानमंत्री संगठन की बात कह रहे हैं तो यहां देखिए संगठन के हमें दो रूप दिखाई दे रहे हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में विशाल बहुमत लेकर के आई है, वो संगठन है, लेकिन जो सरकार है वो एनडीए की है, यानी गठबंधन की सरकार है। हालांकि अकेले के दम पर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन दूसरी पार्टियों के साथ भी चूंकि चुनावी पूर्व बकायदे समझौते हुए थे तो सरकार निश्चित रूप से उन्हें भी अपने में मंत्रिपरिषद में शामिल करके चलेगी और ये सरकार के हिस्से होंगे। तो अब ये जो संगठन है, अब आप देखें कि संगठन क्या करती है। संगठन चुनाव लड़ती है, आप इसे पार्टी भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। वो चुनाव लड़ती है, जनता के बीच जाती है और जनता से वायदे करती है। तो जनता से वायदा करने का काम कौन कर रहा है? याद रखिए सरकार नहीं, पार्टी कर रही है। और अगर इस पार्टी की सरकार बन जाती है तो याद रखिए कि अब इस पार्टी का दायित्व तो है कि वह सरकार से यह कहे कि भाई जो हमने वायदे किए हैं वो पूरा किया जाना चाहिए, और जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती है उसकी तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, वो विपक्ष में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना रोल प्ले करती है। मैं ये बात इसलिए थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि क्योंकि मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कि वो पार्टी और सरकार के अंतर को नहीं समझ पाते। जब मान लीजिए कि पार्टी सरकार से कोई बात कहती है या किसी बात पर हस्तक्षेप करती है या सरकार के किसी काम का विरोध करती है, मान लीजिए, तो वो इससे अन्यथा लेते हैं कि ये देखो ये सरकार के ऊपर अब राजनीतिक हावी हो रहे हैं। नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन दोनों के बीच में परफेक्ट तालमेल होना जरूरी है। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आपने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखी है या नहीं देखी है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल पर बनी हुई फिल्म है, अभी अभी आई थी कुछ समय पहले ही। इस फिल्म को जब आप देखेंगे, हालांकि नाम देखिए इंग्लिश में है लेकिन फिल्म हिंदी में ही बनी हुई है, तो उसमें आपको पार्टी और सरकार के जो द्वंद होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसमें वहां सामंजस्य आपको दिखाई नहीं देगा, और अगर सामंजस्य नहीं है तो ईमान करके चलिए कि सरकार भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेगी। तो इसे आप गलत रूप में न लें, इसे सरकार के ऊपर किया जाने वाला राजनीतिक हस्तक्षेप न माने। एक आपने न्यूज आइटम आज के अखबारों में पढ़ा होगा और बिजनेस स्टैंडर्ड ने तो उसे अपने लीड आइटम के रूप में लिया है, श्रम कानूनों में बदलाव। मतलब सरकार ये अभी एजेंडा तैयार कर रही है जिसमें जो हमारे लेबर लॉज हैं उसमें बदलाव की बात सोची जा रही है। मित्रों, जो श्रम कानून है आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो आपको श्रम कानूनों की बैकग्राउंड तैयार कर लेनी चाहिए। अब जब बदलाव हो जाएंगे तब हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। न्यूज में आपने एक और बहुत अच्छी खबर सुनी कि प्रधानमंत्री जी 30 मई को जब अपना शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद की अपने मिनिस्टर्स के साथ में, कुछ मिनिस्टर्स की भी संभावना है, तो उस समय उन्होंने कुछ नेताओं को, मतलब हमारे जो पड़ोसी देश के जो हेड हैं उनको आमंत्रित किया है। इसमें एक संगठन का नाम आपने सुना है, बिम्सटेक। इसके बारे में मुझे मालूम है कि पहले भी मैं बता चुका हूं, और दो या तीन साल पहले के प्री एग्जामिनेशन में बकायदे बिम्सटेक के बारे में क्वेश्चन भी आया था, प्री में आया था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहां फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, बिम्सटेक का फुल फॉर्म BIMSTEC BEC। तो बी जो है अपने आप में बे ऑफ बंगाल, दोनों बी हैं तो बी है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, यानी ये जो संगठन है उन देशों का संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश है, इस तरह से समझिए। बे ऑफ बंगाल, आई का है इनिशिएटिव, इसके बाद फॉर किस चीज के लिए इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टोरल, MS का है मल्टी सेक्टोरल, फिर है T का टेक्निकल एंड E का इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अब बंगाल की खाड़ी के आसपास के जब आप देश देखेंगे एटलस में, तो कुछ देशों के मैं आपको नाम बता दे रहा हूं जो इसके बकायदे मेंबर हैं, वो है बांग्लादेश, भारत है ही, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। 1997 में यह संगठन बना था और इसमें जो मल्टी सेक्टोरल शब्द है तो बहुत सारे क्षेत्र रखे गए हैं सहयोग के, लगभग 14 क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में देश आपस में मिलकर सहयोग करेंगे। इसके बाद दोस्तों अब मैं करेंट कंटेंट के बारे में बताना चाहूंगा। करेंट कंटेंट हिंदू में छपे एक लेख को हिंदी में आपको प्रोवाइड किया गया है, वो है रोजगारोन्मुखी आर्थिक नीति की जरूरत है। आपको मालूम है कि एम्प्लॉयमेंट भारत की अभी कितनी बड़ी समस्या हो गई है, अभी चुनाव के समय में भी रोजगार की बात बार बार उठाई जा रही थी कि किस तरह से भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। और अगर आज के अखबार को आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पढ़ने को मिला होगा कि सरकार जो सबसे पहले और जो बड़ा कदम उठाने जा रही है वो ये है कि किस तरह से रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं, और बहुत सी वैकेंसी शायद निकलने वाली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। अब मित्रों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, भारत की पड़ोस नीति। देखिए जो बिम्सटेक है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अपने शपथ ग्रहण में इस संगठन के नेताओं को उन्होंने आमंत्रित किया है, इसके अतिरिक्त दो नेता उसमें और भी आने वाले में, एक है मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो अभी हमारे प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था उसके वो चीफ गेस्ट थे, तो इस रूप में उन्हें बुलाया गया है, और दूसरा है किर्गिस्तान के हेड आ रहे हैं। किर्गिस्तान मध्य एशिया का देश है, भारत से काफी सटा हुआ, आपको नक्शे पर मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि वहां संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अभी कुछ ही दिनों बाद मीटिंग होने वाली है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जाएंगे भी संघाई। और यहां अभी कुछ ही दिनों पहले, आपको मालूम है 2-4 दिन पहले ही हमारी विदेश मंत्री वहां की बैठक में गई थी, लेकिन अब ये शिखर सम्मेलन है, तो किर्गिस्तान के भी हेड जो हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में बुलाए गए थे। देखिए ये हमारे पड़ोसी देश हैं, जितने भी अभी शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं ये हमारे पड़ोसी देश के हेड हैं, और पिछले साल भी प्रधानमंत्री जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में के अवसर को इस रूप में बदल दिया था, पड़ोसियों को एक संदेश देने के रूप में कि हम आपके साथ बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। इनफैक्ट सच पूछिए तो पड़ोसी देशों के साथ भारत की जो दोस्ताना नीति है इसकी शुरुआत 1992 में हमारे जो प्रधानमंत्री थे नरसिंहा राव जी के समय से हो गई थी। उस समय एक नारा दिया गया था, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की ओर देखो का मतलब है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं उनके साथ हम अपने संबंधों को बढ़ाएं। दो तरह के संबंध, एक आर्थिक संबंध और दूसरा सामरिक संबंध, और ऐसा करके भारत को एक जो क्षेत्रीय शक्ति है उस रूप में स्थापित करें। और भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी था अगर हम रणनीतिक दृष्टि से देखें, क्योंकि चीन लगातार इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा था। पूर्व की ओर देखो, इसके 2-3 चरण है पड़ोसी देशों के साथ नीति बढ़ाने के, पड़ोसी देशों के साथ संबंध विकसित करने के। इसके कुछ सालों के बाद 1996 में जब गुजराल साहब हमारे विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री गुजराल साहब बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने लेकिन विदेश मंत्री, तब उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहा गया गुजराल सिद्धांत। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, लिखित रूप में नहीं लेकिन है। गुजराल सिद्धांत का भी जो संबंध है वो पड़ोसी देशों के साथ ही संबंधों को बेहतर करने का है। उसका केंद्रीय भाव यह था कि पड़ोसी देशों में भारत के प्रति विश्वास पैदा किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, पड़ोसी देश हमारे छोटे छोटे देश हैं, वो लगातार भारत के प्रति थोड़ी सी हिचक रखते हैं या कुछ अविश्वास के भाव से भी देखते हैं कि भाई इतना बड़ा देश है, तो सबसे पहले हम उनमें विश्वास का भाव पैदा करें, तो ये गुजराल सिद्धांत कहलाया। दोस्तों इसके बाद फिर आया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब अब केवल पूर्व की ओर देखो की बात नहीं है, बल्कि अब हमें पूर्व के साथ एक्ट करना होगा, मतलब कुछ कार्य ऐसे करने होंगे जिससे पूर्व के देशों को, का यूं कह लीजिए कि भारत के साथ विश्वास बढ़े, राइट। तो जब हम पूर्व के देशों के साथ की जब बात करते हैं तो आप देखिए कुछ संगठन सार्क हैं, आसियान हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। अभी हमने बिम्सटेक की बात की, इसमें भी सच पूछे तो पड़ोसी देश ही हैं, लेकिन केवल यही नहीं, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर के भारत ने कुछ और मंचों पर उनसे अपने संबंध बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं यहां उन संगठनों के आपको नाम बता दे रहा हूं ताकि थोड़ी थोड़ी जानकारी आप इन संगठनों के बारे में भी रखें, क्योंकि ये भी प्री में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर इस तरह की पड़ोसी देशों के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें आप कंटेंट के रूप में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ क्षेत्रीय संगठन कौन से हैं, एशियन रीजनल फोरम जिसे कहते हैं आप ARF, इसके बाद है एशिया कोऑपरेशन डायलॉग ACG, इसके बाद एक और संगठन है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC, और इस पर 3-4 साल पहले प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद है इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन IORA, इस पर भी प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कुछ दूसरे संगठन हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से ही बने हुए हैं और भारत इन सब के साथ लगातार अपने संबंध अलग अलग तरीकों से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसी में से एक तरीका है अभी बिम्सटेक के लीडर्स को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना। दोस्तों अब इतना वक्त नहीं है कि इस पर विस्तार से बात की जा सके, लेकिन मैंने जो अभी जो संगठनों के आपके नाम बताए हैं इसलिए बताए हैं कि जब भी पेपर में आपको इनके बारे में कहीं कुछ पढ़ने को मिलता है तो आप इन्हें अनावश्यक समझ करके यू छोड़ न दें, मान करके चले कि नहीं ये इम्पोर्टेंट संगठन है। दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रवि कुमार दरभंगा बिहार से, फैजान खान हरदोई उत्तर प्रदेश से, चेतन सिंह चौहान बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, लाल चंद राव आप हैं सालासार राजस्थान से, और लाल चंद्र राव ने एक राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सफलता प्राप्त की है, हमारे क्लास के स्टूडेंट भी रहे हैं। तो लाल चंद्र राव आपको इस सफलता के लिए मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और इसी के साथ ही एक और मित्र हैं नरेंद्र कुमार प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।